गिनती अध्याय 24। ये देखकर कि यहोवा इसराइल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले की नाई शकुन देखने को ना गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंखें उठाई और इसराइलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। गिनती 24 पहला और दूसरा पद। उसने छावनी को देखा, बीच में मंडप को देखा, और उसके चारों ओर लोगों को रहते देखा। तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा कि बोर के पुत्र बिलाम की ये वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की ये वाणी है। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की ये वाणी है कि हे याकूब तेरे डेरे और हे इसराइल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। वे तो नालों वो घाटियों की नाई और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू, और उसके डोलों से जल उमड़ा करेगा और उसका बीज बहुतेरे जल भरे खेतों में पड़ेगा, और उसका राजा आगाग से भी महान होगा और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। गिनती 24 3 से 7 पद। निश्चय ही राजा और राज्य जो आने वाला है ये यीशु मसीह की भविष्यवाणी है। उसको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वो तो बनेले सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही हैं, उनको वो खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों से उनको भेदेगा। वो दबका बैठा है, वो सिंह या सिंहनी की नाई लेट गया है, अब उसको कौन छेड़े। जो कोई तुझे आशीर्वाद दे सो आशीष पाए, और जो कोई तुझे शाप दे वो श्रापित हो। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलवाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है, इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। गिनती 24 8 से 11 पद। मैं तुझे एक बड़ा मनुष्य बनाना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने रोक रखा है। आप जानते हो कि एक प्रतिष्ठा है जिसे पाने से आप रुके हुए हो, अधार्मिकता का पुरस्कार। मैं तुझे बढ़ाना चाहता था कि तेरी प्रतिष्ठा हो, परंतु परमेश्वर वे प्रतिष्ठा अब देना नहीं चाहता। मैं कहता हूं परमेश्वर ने उस प्रतिष्ठा से आपको रोक रखा है। बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे क्या मैंने उनसे भी ना कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से ना तो भला कर सकता हूं और ना बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूंगा। अब सुन, मैं अपने लोगों के पास लौट कर जाता हूं, परंतु पहले मैं तुझे चिता देता हूं कि अंत के दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या क्या करेंगे। गिनती 24 12 से 14 पद। मैं तुझे एक बात और बताता हूं, और उसने एक बार फिर यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की, और ये यीशु के बारे में सुंदर भविष्यवाणी है। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की ये वाणी है। कि मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इसराइल में से एक राज दंड उठेगा जो मोआब की आलंगों को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। तब एदोम और सेईर भी, जो उसके शत्रु है, दोनों उसके वश में पड़ेगा और इसराइल वीरता दिखाता जाएगा। और याकूब ही में से एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं को भी सत्यानाश करेगा। फिर उसने अमालेक पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, अमालेक अन्य जातियों में श्रेष्ठ तो था, परंतु उसका अंत विनाशी है। गिनती 24:16-20 पद। अमालेक धर्म शास्त्र में सदा ही शरीर को दर्शाता है। आज इसके विस्तार में जाने का समय नहीं है, परंतु जब हम एस्तर की पुस्तक में जाएंगे, हम अमालेक के बारे में और अधिक देखेंगे। परंतु ये शरीर के विरुद्ध परमेश्वर का वचन है जो सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। शारीरिक जीवन सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर का निर्देश शौल को अमालेकियों के प्रति क्या था? उनको पूर्णतः समाप्त कर देना। यदि तू उन्हें नष्ट ना करे तो वे तुझे नष्ट कर देंगे। पौलुस ने कहा, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। रोमियो 8:13। हमें शरीर को जगह नहीं देना है, परंतु यदि आप आत्मा के पीछे चलेंगे तो आत्मा से देह के क्रियाओं को मारोगे। अतः अमालेक की यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, क्योंकि परमेश्वर देह के विनाश की घोषणा करता है, उसका सदा के लिए सर्वनाश हो जाएगा। फिर उसने केनियों पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, तेरा निवास स्थान अति दृढ़ तो है और तेरा बसेरा चट्टान पर तो है, तो भी केन उजड़ जाएगा और अंत में अशूर तुझे बंदवाई में ले आएगा। फिर उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हाय, जब परमेश्वर ये करेगा तब कौन जीवित बचेगा? तो भी कितियों के पास से जहाज वाले आकर अशूर को और एबेर को भी दुख देंगे और अंत में उसका भी विनाश हो जाएगा। तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया और बालाक ने भी अपना मार्ग लिया। गिनती 24:21-25 पद। आप सोच रहे होंगे, बिलाम बहुत खुश था, वो एक भला मनुष्य था। नहीं, दुर्भाग्यवश बिलाम ने कहा, मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। परंतु मैं विश्वास नहीं करता कि बिलाम परमेश्वर के राज्य का भागी होगा, चाहे वो परमेश्वर का नबी था। उसने लालच को अपने हृदय पर राज्य करने दिया। राजा ने उसे बहुत पुरस्कार देने की प्रतिज्ञा की थी। बिलाम ने परमेश्वर से वहां जाने की जिद की, परंतु परमेश्वर ने उन्हें शाप नहीं देने दिया और राजा ने कहा, ठीक है, ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम घर लौट जाओ। मैंने तुझे शाप देने को बुलाया था और तूने आशीष दी है। तू जानता है कि मैं तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करने वाला था, अब मैं नहीं करूंगा। बिलाम राजा द्वारा दिए गए पुरस्कार के प्रलोभन के कारण राजा को सलाह देने लगा। उसकी सलाह इसराइल की हानि की ही होती थी, जिसका परिणाम हम अध्याय 31 में देखते हैं। देखो, इसराइल की संतान बिलाम की सलाह से पोर के विषय में परमेश्वर के विरुद्ध अपराध में पड़ गए। गिनती 31:16। पोर में क्या हुआ, ये हम आगे चलकर देखेंगे। यहां सत्य तो यह है कि जो कुछ भी हुआ वो बिलाम की लालच के कारण हुआ। बिलाम ने राजा बालाक को अनुचित सलाह दी। वो पुरस्कार की लालची था, इसलिए उसने गलत सलाह दी। यहूदा की पुस्तक नए नियम में उसका मुख्य संदेश है, स्वयं को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। वहां हमें तीन लोगों के उदाहरण दिए गए जो स्वयं को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखने में असफल रहे, कोहरा, केन और बिलाम। बिलाम का उदाहरण देकर कहा गया है वो लालची था और राजा बालाक की धन संपत्ति एवं समृद्धि की कामना करता था। वे पिरगमुन की कलिसिया बिलाम के मार्ग पर चले। इसको बिलाम का मार्ग कहा गया है। उसने पुरस्कार का लालच किया। धन संपत्ति की कामना ने उसे राजा का दलाल बना दिया था। वो बिक चुका था, राजा के सन्मुख वेश्या जैसे बना दिया, वो खरीद लिया गया। प्रभु पिरगमुन की कलीसिया से कहता है कि तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाए और व्यभिचार करें। प्रकाशित वाक्य 2:14। बिलाम की शिक्षा जो उसने राजा बालाक को दी वो मूर्ति पूजा और आत्मिक व्यभिचार की थी, और हमारा संदर्भ ये नहीं बताता कि फिर वहां क्या हुआ, परंतु धर्म शास्त्र में देखने से पता चलता है कि आगे वहां क्या हुआ होगा। दूसरा पत्रस 2:15 में भी बिलाम का उल्लेख है, जहां वो झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में कहता है, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिपा कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे, और बहुतेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊंगता नहीं। 2 पत्रस 2:1-3 पर सब धार्मिक सेवकाइयां या परमेश्वर के नबी कहलाने वाले जन जो तुमसे चतुराई की बातें करके लाभ उठाना चाहते हैं, वे सब झूठे भविष्यद्वक्ता है जिन्हें आप आसानी से पहचान सकते हैं। वे आपको धोखा देने के लिए कानों को अच्छी लगने वाली मीठी मीठी बातें करते हैं, जिससे कि आप उन्हें पैसा भेज दें। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि उनका प्रत्येक पत्र आडंबरी शब्दों से भरा होता है। मेरा एक मित्र इस सप्ताह मेरे साथ था, वो क्रिश्चियनिटी टुडे का संपादक है। आज का मसीह विश्वास, उसने मुझे बताया कि उनके पास पत्र आते हैं जिनमें लिखा होता है, प्रिय टुडे, पिछले सप्ताह आपके बारे में बहुत सोच रहा था, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? अब आप कृपया एक काम करके कहीं से भी $25 लेकर मुझे भेज दे, क्योंकि मैं बड़ी परेशानी में हूं। ये शब्द आडंबर था, जिनका एकमात्र उद्देश्य कि आपसे लाभ उठाए। बाइबल इन्हें झूठे भविष्यद्वक्ता कहती है। आडंबर से पूर्ण शब्दों का क्या अर्थ है? ये वे शब्द है जिनका आप उपयोग तो करते हैं, परंतु आपके मन में ऐसा कोई विचार नहीं है, जैसे ओ प्यारे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जब आप किसी को जानते ही नहीं तो आप कैसे उनसे प्रेम कर सकते हैं? इन शब्दों के उपयोग को ही स्वंग रचना कहते हैं। ऐसे झूठे भविष्यत वक्ताओं के लिए ही पत्रस हमें सतर्क करता है कि वे बिलाम की तरह है, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। दूसरा पत्रस 2:15। वो धन को प्रिय मानता है। एक झूठा भविष्यत वक्ता था, उसने सेवकाई को दलाली में बदल दिया था कि धनवान बन जाए। इसलिए उसने राजा को सलाह दी, देखो बालाक, मैं आत्मिकता का प्रयोग करके इन लोगों को शाप नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर मुझे ऐसा नहीं करने देगा। उनकी शक्ति का एक भेद है, वे एकमात्र सच्चे परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। वो परमेश्वर उन्हें प्रतिष्ठित करता है तथा उन्हें अपनी संतान कहता है। ये एक भेद की बात है। उनका परमेश्वर एक जलन रखने वाला परमेश्वर है, और यदि वे मूर्ति पूजा करेंगे वो क्रोधित होकर उनका नाश कर देगा। इस कारण जो तुझे करना है वो ये है कि तू कुछ सुंदर युवतियों को उनके साथ भेज दे कि वे वहां जाकर उनके लड़कों के साथ प्रेम का अभिनय करें, और जब वे उनके प्रेम जाल में फंस जाएं, तब लड़कियां अपनी मूर्तियों को सजाकर कहें, देखो ये हमारे देवता है, हम इनकी उपासना करते हैं। क्या तुम देखना चाहोगे कि हम कैसे उपासना करते हैं? उनकी उपासना में व्यभिचार आवश्यक था। उस समय बहुत से मूर्ति पूजक धर्मों में कामुकता आराधना का भाग होती थी, जैसी देवी वीनस और देवी एफ्रोडाइट आदि की उपासना। यही कारण था कि बिलाम ने बालाक को ऐसी सलाह दी। इससे आगे अध्याय 25 में हम देखेंगे।